नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वह जांच और कानूनी कार्रवाई का विषय तो है ही। हम आज के वीडियो में इस पर बात भी करेंगे कि यह घटना कैसे अफवाहों के जरिए सामने आती है और धीरे धीरे ठोस रूप लेने लग जाती है। इस मामले को कवर किया ही जाना चाहिए। स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थीं। जनवरी महीने में राज्यसभा का सदस्य बनाए जाने के बाद यह पद छोड़ दिया। इस समय दिल्ली महिला आयोग का कोई भी अध्यक्ष नहीं है। मालीवाल आज पहली बार सार्वजनिक हुई जब वे 30,000 कोर्ट गईं और वहां अपना बयान दर्ज कराया। उनके सामने आते ही दिल्ली की राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है। अभी तक स्वाति की लड़ाई बीजेपी लड़ रही थी और स्वाति सामने नहीं थी। अब वे खुद इस लड़ाई का चेहरा बनने जा रही हैं। यह घटना 13 मई की है और 16 मई को FIR होती है। आज 17 मई को कोर्ट में बयान दर्ज होता है, लेकिन स्वाति के FIR कराने के पहले से ही बीजेपी इस मामले में सक्रिय हो चुकी थी और उसने दबाव बनाना शुरू कर दिया। हमारा आग्रह है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बीच बीच में दूसरे प्रसंग आते रहेंगे, उनका भी इस राजनीति के माहौल में विशेष संदर्भ है, इसलिए अनदेखा करना संभव नहीं। लेकिन मीडिया जिस तरह से इस मामले में स्वाति से पहले सक्रिय हो गया, बीजेपी की महिला शाखा आहत होकर सड़कों पर उतर आई, उसे देखकर थोड़ी हैरानी होती है। यह बता रहा है कि इस देश में मुद्दा वही बड़ा होगा जिसे बीजेपी चाहेगी और मीडिया बड़ा बनाएगा। स्वाति मालीवाल का मामला किसी भी स्तर से छोटा नहीं किया जाना चाहिए। आज एक वीडियो जारी कर दिया गया जिसमें स्वाति मालीवाल की सुरक्षा कर्मियों के साथ अरविंद केजरीवाल के घर पर बहस हो रही है। मगर हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि ऐसा कोई भी वीडियो जो स्वाति के पक्ष को कमजोर करे या विभव के पक्ष को मजबूत करे, इस वक्त उससे बचना चाहिए। चूंकि यह वीडियो वायरल हो रहा है तो हम भी इसे दिखा रहे हैं।
हाँ बता देना, वो आपका है।
अभी
कर रहे हैं, आप आइए, आप
उधर
आप आइए ना।
नहीं, मैं ऐसे छोड़ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले।
नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते।
नहीं, अब यही होगा, जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा।
तो सभी तो कह रहे हैं, हम पुलिस रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस कम, उसके बाद मैं बात करूँ।
तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना।
नहीं, कुछ नहीं होता, अंदर ही आएगी। जो
प्लीज कम,
मैडम
प्लीज
उठा के
पहने दो, उठा के पहने। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं
आपसे, हम तो
रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज लोग हैं,
हम
आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे।
ये गंजा
प्लीज, आप ऐसा मैडम नहीं,
आप ऐसा ना बोले।
जस्ट बिकॉज यू आर सीसीटीवी,
यह वीडियो सीसीटीवी का तो नहीं लगता है, फोन कैमरा की रिकॉर्डिंग लगती है। पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वीडियो कब का है, स्वाति के साथ कथित मारपीट से पहले का या मारपीट के बाद का। इस वीडियो में स्वाति मालीवाल और गार्ड के बीच बहस रिकॉर्ड की गई है। वीडियो बहस के बीच शुरू होता है। स्वाति कहती हैं कि आज मैं सबको बताऊंगी, मेरी DCP से बात कराइए, मैं SHO सिविल लाइन से बात करूंगी। गार्ड कहता है हम कराएंगे, आप बाहर आइए। स्वाति जाने से मना करती हैं तो गार्ड कहते हैं यहां नहीं हो सकता। इस पर स्वाति कहती हैं यही होगा, अगर मुझे टच करोगे तो तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी। इस वीडियो में एक झलक के लिए स्वाति को देखा जा सकता है, बाकी समय उनकी आवाज ही सुनाई देती है। गार्ड आग्रह करते हैं कि प्लीज बाहर चलिए। स्वाति कहती हैं मैंने 112 पर फोन किया है, पुलिस को आने दो, उसके बाद बात करूंगी। पुलिस के आने के बारे में गार्ड कहते हैं पुलिस भी बाहर ही आएगी, आप बाहर चलिए। स्वाति कहती हैं जो होगा अब तमाशा होगा। इस पर वे गुस्से में कहती हैं कि उठाकर बाहर फेंक दो। गार्ड कहते हैं आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ हम ऐसा थोड़े ना करेंगे। इसके बाद स्वाति गुस्से में विभव को अपशब्द कहती हैं और गार्ड उन्हें समझाते हैं। यहाँ वीडियो रुक जाता है। इस वीडियो से यह स्थापित नहीं होता कि स्वाति के साथ जो हिंसा हुई वो इस वीडियो के पहले हुई या बाद में। यह भी स्पष्ट नहीं कि इस कमरे में और कौन कौन है, विभव कहाँ है, केजरीवाल कहाँ है। इससे पहले और बाद में क्या हुआ इस वीडियो से कोई जानकारी नहीं मिलती है या वीडियो सीसीटीवी का नहीं लगता। इस तरह के वीडियो लीक जब सूत्रों के हवाले से किए जाते हैं तो संदेह गहरा होता है। मीडिया में ऐसे वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष या किसी और को दोषी साबित करने से अच्छा है स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों ही इस मामले में पारदर्शिता बरतें। इस पर चुप रहने या दबाने की रणनीति आम आदमी पार्टी को भारी पड़ सकती है। या तो सब कुछ सामने से बताया जाए और जो साक्ष्य हैं उसे रखा जाए, या फिर इस तरह की बातों से बचकर कानूनी कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए और कानून का इंतजार करना चाहिए। इस वीडियो के आने के बाद स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट किया और अपना पक्ष रखा है। स्वाति मालीवाल ने इस ट्वीट में लिखा है कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के आधी बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसे लगता है ये इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है। एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में राजनीतिक हिटमैन किसे कहा है? क्या स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के बीच संबंध इस हद तक बिगड़ गए हैं या संबंध बिगड़ जाने के बाद ये नौबत आई है? स्वाति मालीवाल की एक बात सही है कि सीसीटीवी के फुटेज आने तक इंतजार किया जाना चाहिए। वे अगर दावा कर रही हैं कि सच्चाई एक एक कर बाहर आएगी, उस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन अभी लगता है कि मीडिया में बहुत से वीडियो लीक होने हैं, इसलिए थोड़ा संयम भी बरतना चाहिए। इस वीडियो के बाद एक चीज तय है कि अगर केजरीवाल के कैंप ऑफिस के ड्राइंग रूम में सीसीटीवी है तो अब उसका फुटेज या उसका डिटेल भी बाहर आएगा। एफआईआर के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज हासिल करेगी, मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी पूछताछ होगी और विभव कुमार की गिरफ्तारी निश्चित है। हम इस मामले के डिटेल पर आएंगे इसी वीडियो में। चूंकि यह मामला राजनीतिक भी हो गया है तो राजनीति का हाल भी देखिए। इसी समय में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में बीजेपी के उम्मीदवार अभिजीत गांगुली के बयान की भी चर्चा है। अभिजीत गांगुली हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट के जज के पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए और तुमलुक से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अभिजीत ने ममता बनर्जी के बारे में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है उसे लेकर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कहा है कि कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। बीजेपी ने कहा है कि यह वीडियो फेक है। मीडिया में भी कई जगह लिखा जा रहा है कि हम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से अभिजीत गांगुली इस वीडियो में कथित रूप से ममता बनर्जी के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है। ऐसे वीडियो की तुरंत जांच होनी चाहिए। जांच होगी वीडियो सही है या नहीं, इस तरह का लाभ अभिजीत गांगुली को नहीं मिलना चाहिए। अगर ये फेक है तो फेक वीडियो बनाने के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। स्वाति मालीवाल के मामले में मीडिया बीजेपी की तरह क्यों सक्रिय है? क्या उसके पीछे केवल इस स्टोरी की मेरिट है या कुछ और है? फिर बीजेपी के जिस उम्मीदवार ने ममता के रेट की बात की है, क्या उस स्टोरी में कोई मेरिट नहीं? कर्नाटका का प्रज्वल रेवन्ना, जिस पर अनगिनत महिलाओं के साथ कथित रूप से यौन शोषण करने और वीडियो बनाने के आरोप हैं, वो आज तक भारत नहीं लौटा। आपने प्रज्वल रेवन्ना के घर के बाहर इतने पत्रकारों को इंतजार करते देखा जितने स्वाति मालीवाल के घर के बाहर इंतजार करते रहे? यह वीडियो ट्विटर पर खूब दिखाया जा रहा है। यह बताता है कि अगर कोई मुद्दा बीजेपी को सूट करता है तो उसे बड़ा करने के लिए कितने पत्रकार लगाए जा सकते हैं। अगर प्रज्वल रेवन्ना आम आदमी पार्टी का नेता होता तो इतने ही पत्रकार आज जर्मनी में उसे खोज रहे होते। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी अभी तक रद्द नहीं हुआ है। स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो बिल्कुल जांच और कार्रवाई का विषय है जो शुरू हो चुकी है। इस मामले में आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रही, उससे क्या चूक हुई, अरविंद केजरीवाल से क्या चूक हुई, उन्होंने किसे बचाने का प्रयास किया, स्वाति को या विभव को, यह सब सवाल उसी सख्ती से पूछा जाना चाहिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रज्वल रेवन्ना पर सवाल पूछने पर संदेश खाली का जिक्र ले आते हैं तो आपको टेलीग्राफ की 9 मई की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, संदेश खाली को लेकर छपी है। वहां एक वृद्ध महिला ने दावा किया है कि फरवरी में उससे भाजपा कार्यकर्ता ने कथित तौर पर कोरे कागज पर दस्तखत करवाया। यह सारा घटनाक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की मौजूदगी में हुआ। बाद में उन्हें मालूम हुआ कि उसी कागज पर सेक्सुअल असॉल्ट और रेप की याचिका उनकी जानकारी के बगैर लिखकर भेजी गई, जबकि उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 14 मई की इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि इस भाजपा कार्यकर्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है, अदालत ने 8 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। संदेश खाली की सच्चाई अब विवादास्पद है। यह मामला इतना राजनीतिक हो चुका है कि इसके सच को सामने आने तक राजनीतिक मकसद पूरा हो चुका होगा। हम संदेश खाली के डिटेल में अभी नहीं जाना चाहते क्योंकि हमें जल्दी से स्वाति मालीवाल के मसले पर आना है। हम अभी राजनीतिक प्रदर्शनों और मीडिया के कवरेज की बात कर रहे हैं। यह मीडिया और बीजेपी तभी क्यों सक्रिय होती है जब किसी विरोधी दल को टारगेट करना होता है। न्यूज मिनट की वेबसाइट पर आपको प्रज्वल रेवन्ना की करतूत को लेकर कई रिपोर्ट मिलेगी। इस सीरीज का नाम है प्रज्वल रेवन्ना टेप्स दी आफ्टरमाथ। इसमें बताया गया है कि प्रज्वल के हजारों वीडियो ने कर्नाटका के हासन के लोगों के जीवन में तबाही मचा दी है। इस घटना ने हासन में पीड़ित महिलाओं की निजता और गरिमा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। हासन एक छोटा सा शहर है, सब एक दूसरे को जानते हैं। जिन परिवारों की पहचान बाहर आ गई है वो अपने घरों से निकल नहीं पा रहे। जो लड़कियां वीडियो देख रही हैं उन्हें पुरुषों से डर लगने लगा है, कहती हैं हम शादी नहीं करेंगे। न्यूज मिनट लिखता है कि इस घटना ने हासन का सामाजिक ताना बाना दूषित कर दिया है, महिलाओं में व्यापक तौर पर ट्रॉमा फैल गया है। स्वाति मालीवाल सक्षम महिला है, राज्यसभा की सांसद है, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, फिर भी उन्हें किसी भी प्रकार के आघात से उबरने के लिए सबके साथ की जरूरत पड़ सकती है और सभी को उनके ही पक्ष में खड़ा रहना चाहिए। लेकिन कर्नाटका के हासन की आम महिलाओं की यातना के बारे में सोचिए, उनके साथ कोई नहीं। कौन है उनके साथ? उनमें हिम्मत भरने के लिए कितना मीडिया प्रज्वल का पीछा कर रहा है, बीजेपी से जवाब मांग रहा है और बीजेपी की महिला नेता उनके लिए प्रदर्शन कर रही हैं। पहले आप इस खबर को देखिए। लिखा है महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बिना शिकायत के एक सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर खुद से संज्ञान लिया और केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को पेशी के लिए बुला लिया। खुद से संज्ञान लेकर किसी को बुलाने का अधिकार उनके पास है। अब आप इस खबर को देखिए। प्रज्वल रेवन्ना केस में रेखा शर्मा उसे पेशी के लिए नहीं बुलाती, कहती हैं उनके पास रेवन्ना के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई। महिला आयोग ने प्रज्वल के मामले में अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट में भी कहा है कि प्रज्वल के मामले में उनके पास कोई शिकायत करने नहीं आया। पद्मा सेठ और सैयदा हमीद ने प्रज्वल रेवन्ना मामले में इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है कि महिला आयोग के पास सिविल कोर्ट की ताकत होती है। क्या रेखा शर्मा अपनी शक्तियां भूल गई हैं? उन्हें शिकायत का इंतजार करने की जरूरत नहीं। जहां अपराध हुआ है उन्हें वहां तुरंत पहुंच जाना चाहिए। हासन में लोगों ने डर के मारे अपने घर बदल लिए हैं। इसी से NCW को पता चल जाना चाहिए था कि संज्ञान लेने की जरूरत है। महिला आयोग के इस कदम को राजनीतिक नजरिए से देखा गया कि जहां बीजेपी को नुकसान हो सकता था वहां उसकी सक्रियता घट जाती है, तो क्या दिल्ली में इसी वजह से विभव कुमार को नोटिस भेजा गया क्योंकि यहां बीजेपी को 7 सीटों पर माहौल बनाने में फायदा हो सकता है? बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस के बारे में बात कर लेते हैं। उनके खिलाफ 2 महिलाएं यौन शोषण के आरोप लगा चुकी हैं। गोदी मीडिया चुप हो गया और बीजेपी की महिला नेता या महिला संगठन उन 2 औरतों के साथ जांच हो जाने तक खड़ी नजर नहीं आई। राज्यपाल के खिलाफ नहीं बोलती। हमने बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस पर जब पहली बार आरोप लगा तब वीडियो बनाया था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद एक और महिला ने आरोप लगाया, उसकी खबर भी छपी मगर हम वीडियो नहीं बना सके।
बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस को लेकर जो यौन उत्पीड़न मामला है ये दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। पहले एक महिला सामने आई जो राजभवन में काम करती है, जिन्होंने कहा कि राजभवन में ही CV आनंद बोस ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। अब एक और महिला सामने आई है जो एक डांसर है, जिन्होंने कहा है कि नई दिल्ली के एक होटल में 2023 में राज्यपाल CV आनंद बोस ने इस होटल के अंदर इस महिला के साथ छेड़छाड़ किया, गलत व्यवहार किया। केंद्र सरकार मोदी सरकार इस मामले में चुप्पी साधी है, चुप्पी तोड़िए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, बताइए क्या कार्रवाई करेंगे राज्यपाल सी वी आनंद बोस के खिलाफ, क्या राष्ट्रपति को कहेंगे कार्रवाई करने के लिए बंगाल राज्यपाल के खिलाफ, या आपका नारा, नारी शक्ति का नारा, नारी सम्मान का नारा, नारा बनकर ही रह जाएगा।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर जब आरोप लगा तब बीजेपी की महिला नेताओं और महिला संगठन ने उस तरह की सक्रियता क्यों नहीं दिखाई? अगर वे आम आदमी पार्टी की नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के लिए लड़ सकती हैं, तो उन दो महिलाओं के लिए क्यों चुप हैं जिन्होंने एक राज्यपाल पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं? राज्यपाल ताकतवर व्यक्ति होता है, उसे कानून से कई प्रकार का संरक्षण हासिल है, उसके खिलाफ दो महिलाओं का आरोप लगाना कितना जोखिम भरा हो सकता है? क्या आपने कोलकाता में राजभवन के बाहर मीडिया के कैमरों का ऐसा जमावड़ा देखा जैसा स्वाति मालीवाल के लिए कैमरे तैनात कर दिए गए? कम से कम इस मीडिया से ये तो पूछा जाना चाहिए कि जब दिल्ली में महिला पहलवान हफ्तों तक धरने पर थीं तो मीडिया ने उनके साथ क्या किया? प्रज्वल रेवन्ना से लेकर ब्रजभूषण सिंह तक, मणिपुर की महिलाओं से लेकर बंगाल के राज्यपाल पर कथित रूप से आरोप लगाने वाली दो महिलाओं के लिए निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी नहीं बोलती हैं। मणिपुर के मामले में स्मृति ईरानी का बयान तब आया जब वीडियो वायरल हुआ, उसके पहले भी और बाद भी महिलाओं ने वहां बड़े पैमाने पर हर तरह की हिंसा का सामना किया। स्मृति ईरानी मणिपुर नहीं गई।
आप लोग, मुझे नहीं पता, आप लोग भी टीवी पे इतना कम दिखा रहे हैं अभी बार, यहाँ पे तो आप खूब भीड़ है पर टीवी पे आप लोग भी कम दिखा रहे हैं, किस चीज़ का दबाव है आपके ऊपर भी हम, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, तो लेकिन टीवी पे आप लोग भी अबकी बार कम दिखा रहे हैं।
शुक्रवार 17 मई की दोपहर से पहले तक स्वाति मालीवाल ने ट्विटर के अलावा सामने आकर मीडिया में अपना पक्ष नहीं रखा। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष के रूप में वे महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर काफी मुखर रही हैं और मौके पर पहुंचने में भी सक्रिय रही हैं, लेकिन अपने मामले में वे 5 दिनों तक सामने नहीं आ सकी। इस बीच इस मामले में कई तरह की अफवाहें उड़ी और उनका पक्ष सामने आए बिना लोग निश्चित रूप से कई तरह के दावे करने लग गए। अफवाहों को बल तब मिला जब राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के नेता ने 14 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। संजय सिंह ने गलती मान ली। यहां से इस पूरे मामले को वैधानिकता मिल जाती है कि कुछ हुआ था और क्या हुआ था।
कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थीं, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थीं। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं, पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं, हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं।
संजय सिंह का 14 मई का यह बयान काफी था कि दिल्ली पुलिस एक्शन शुरू कर सकती थी, स्वाति मालीवाल उसी दिन FIR करा सकती थी। इस बयान में संजय सिंह ने माना है कि विभव कुमार ने बदतमीजी की, अभद्रता की। संजय सिंह के बयान में एक और बात नोट करने लायक है, वे स्वाति मालीवाल का कोई पक्ष नहीं रखते, यानी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, पुलिस को सूचना दी गई। आम आदमी पार्टी निंदा करती है, मगर उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति की किस हद तक रजामंदी है, उन्होंने क्या कहा है, या कोई समझौता या सुलह हो गया है, ये नहीं आता है। स्वाति मालीवाल भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पब्लिक में कुछ नहीं कहती, जबकि 13 मई की घटना है, 14 मई को संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस का गलती मानते हैं, और इन सबके दो दिनों के बाद 16 मई की रात 8:29 पर इस घटना को लेकर स्वाति का ट्वीट आता है। इस मामले में वे पहली बार बोलती हैं। इससे पहले सभी खबरें सूत्रों के हवाले से चलाई जा रही थीं और स्वाति का खुद का कोई बयान मीडिया के पास नहीं था। लिखती हैं ट्वीट में कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है, मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं, जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूं। जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है, इस घटना पे राजनीति ना करें। स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिन लोगों ने चरित्र हनन की कोशिश की कि वे दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही हैं, भगवान उन्हें भी खुश रखे, और बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना पे राजनीति ना करें। बीजेपी को राजनीति से दूर रहने की नसीहत भी देती हैं, लेकिन जिन्होंने उनके चरित्र हनन की कोशिश की उनकी खुशी क्यों चाहती हैं और क्यों कहती हैं कि देश में दूसरे मुद्दे जरूरी हैं, चुनाव चल रहे हैं, स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं। मगर अब तो सब कुछ बदल गया है। उनका यह कहना कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही हैं, क्या यह चरित्र हनन है? हो सकता है, अगर इससे अधिक कोई बात है तो स्वाति मालीवाल को ही स्पष्ट करना चाहिए। मीडिया में ज्यादातर खबरें सूत्रों के हवाले से छपी हैं। इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है कि 13 मई की सुबह 9:34 पर एक फोन नंबर से पुलिस को PCR कॉल मिलती है। अखबार से यह पता नहीं चलता कि खबर सूत्रों के हवाले से है या दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी ने कहा है। इन सब बातों को किसी भी रिपोर्ट में हमेशा नोट किया कीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मामले पर रिपोर्ट करते हुए 17 मई को लिखा कि सोमवार को केजरीवाल के घर पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जब स्वाति मालीवाल ने पुलिस को फोन किया कि केजरीवाल के निजी सहायक ने उन पर हमला किया है। वे FIR कराने पुलिस स्टेशन गईं, लेकिन कुछ फोन कॉल के बाद थाने से बाहर आ गईं, यह कहते हुए कि वापस आ रही हैं, मगर वापस नहीं गईं। दिल्ली पुलिस ने उनकी शिकायत के आगे लंबित पेंडिंग लिख दिया। अखबार ने लिखा है कि पुलिस उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है। 16 मई की सुबह 11:00 वे पुलिस के फोन का जवाब देती है। वो सिविल लाइन्स थाने भी गईं, लेकिन किसी का फोन कॉल आ जाता है और वे थाने से बाहर चली जाती हैं, शिकायत भी नहीं कराती हैं, फिर 3 दिनों तक पुलिस को जवाब नहीं देती हैं। किसका फोन आया, उन्होंने तभी FIR क्यों नहीं कराई, फोन कॉल किसका आया होगा, यह सब जांच का और रहस्य का विषय है। स्वाति मालीवाल 13 मई को जब थाने गई थी तभी FIR क्यों नहीं कराया, उनका थाने तक जाना यही बता रहा है कि उन्हें किसी ने रोका नहीं। क्या उसके बाद कुछ समझौता हुआ, ये समझौता क्यों हुआ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो उन्हें बताना चाहिए, संजय सिंह को भी बताना चाहिए। जिस तरह के आरोप उन्होंने FIR में लगाए हैं, कम से कम उन्हें समझौता नहीं करना चाहिए था, ना उस दिन रुकना चाहिए था। चुनाव का समय है, राजनीतिक दल शामिल हैं, राजनीति को लेकर संदेह होना स्वाभाविक है। कई मीडिया में यह बात दर्ज हो रही थी कि थाने गई, फिर एक फोन आया और कहकर निकल गई, मैं आती हूं। 2014 के बाद से हमने ऐसे कई मामले देखे हैं, कैसे उसे गोदी मीडिया के सहारे राजनीतिक रूप से खड़ा किया जाता है, फिर कार्रवाई हो जाती है और बाद में उस मामले में कुछ नहीं निकलता। यहां स्वाति ने दावा किया है कि सच्चाई जल्द सामने आएगी। इसी अनुभव को देखते हुए बेहतर होता है कि थोड़ा इंतजार कर लिया जाए, वीडियो बनाने में जल्दबाजी ना की जाए, क्योंकि इस मामले में 16 मई से पहले तक स्वाति अपने लिए नहीं लड़ रही थी, बीजेपी स्वाति के लिए लड़ रही थी, जाहिर है संदेह होना था। अब इस रिपोर्ट को देखिए, घटना 13 मई की है, उसी दिन थाने जाकर स्वाति लौट आती हैं, फिर नहीं जाती हैं, लेकिन 4 दिन के बाद 16 मई की रात एम्स में मेडिकल कराने जाती हैं। चार घंटे तक मेडिकल होता है। दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना सिंह उनके साथ थीं। दिल्ली सरकार के अस्पताल में मेडिकल नहीं कराती हैं, हो सकता है उनका विश्वास अब ना रहा हो, लेकिन एम्स में मेडिकल कराने से दूसरे संदेह हो सकते हैं। एक सवाल यह है कि स्वाति मालीवाल को चोट लगती है 13 मई के दिन, चार दिनों के बाद स्वाति मालीवाल मेडिकल कराने जाती है, इतने दिनों तक इंतजार क्यों करती है? स्वाति मालीवाल तभी क्यों नहीं गई एमएलसी कराने के लिए? उन्हें तो इन सब कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में ठीक से पता है। 13 मई को स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस थाने गई थीं, एफआईआर कराए बिना लौट आईं। उस समय का भी सीसीटीवी निकाला जाना चाहिए कि स्वाति की क्या हालत थी उस वक्त, क्या पुलिस ने उस वक्त नोट किया कि इनकी हालत खराब है, बहुत चोट लगी है। इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि स्वाति के चेहरे पर आंतरिक चोटें आई हैं, एक्सरे और सीटी स्कैन किया गया है। इंडिया टुडे ने लिखा है कि पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि नाजुक अंगों पर भी हमला किया गया। समाचार एजेंसी एएनआई ने प्रियंका गांधी से स्वाति मालीवाल पर सवाल पूछा और उन्होंने जवाब भी दिया। इसी तरह मीडिया अगर बंगाल के राज्यपाल पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर प्रियंका गांधी से ही या बीजेपी के किसी नेता से पूछता, प्रज्वल रेवन्ना को लेकर अभियान चलाता या मीडिया महिला पहलवानों के पक्ष में खड़ा हो जाता तो बेहतर होता, लेकिन उल्टा महिला पहलवानों को ही खलनायक बनाया गया। उनकी शिकायतों पर उस तरह से भरोसा नहीं किया गया जिस तरह से स्वाति मालीवाल के आरोपों पर भरोसा पैदा किया जा रहा है। यही अंतर है और इसी वक्त में इस अंतर को समझना होगा। इसी वक्त में जब स्वाति मालीवाल का मामला उठ चुका था, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक आईपीएल देखने जाती हैं, उन्हें स्टेडियम में जाने से रोक दिया जाता है, इन महिलाओं को इनके हाल पर छोड़ दिया गया, इनके हक के लिए कोई लड़ने नहीं आया, इन्होंने कुश्ती ही छोड़ दी। चुनाव के समय में राजनीतिक संदेहों से आप कभी बच नहीं सकते, लेकिन किसी भी समय में आपको तमाम संदेहों को किनारे कर महिला का ही साथ देना पड़ता है। इसी मामले में प्रियंका गांधी का एक बयान घटना को देखने का स्पष्ट नजरिया देता है। यही इस राजनीति के लिए मजबूरी भी है और जरूरी भी। प्रियंका गांधी ने मीडिया से कहा कि इस मामले में दो बात है, महिलाओं के साथ कहीं अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है तो हम महिलाओं के साथ ही खड़े हैं, मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूं चाहे वे किसी भी पार्टी की हों। विभव कुमार की गिरफ्तारी दिल्ली में केजरीवाल की रिहाई से भी बड़ा इवेंट बनने वाला है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इस घटना का कवरेज इतना बड़ा व्यापक होगा कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली की जनता को समझ नहीं आएगा कि वह क्या करे, किसे सही माने किसे गलत। इस मामले में थोड़ा धीरज रखना चाहिए क्योंकि हम भी मीडिया रिपोर्ट पर ही निर्भर हैं। आम आदमी पार्टी ने भी वीडियो बनाए जाने तक इस मामले में चुप्पी साधे रखी। 16 मई को लखनऊ में जब अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तब इस प्रसंग पर पत्रकारों के सवालों पर दोनों नेता असहज नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के विषय पर जवाब भी नहीं दिया। अखिलेश यादव भी असहज हो गए और कह पड़े कि और भी बड़े मुद्दे हैं, लेकिन केजरीवाल की चुप्पी ही इसे बड़ा मुद्दा बना रही थी। वहीं बगल में बैठे थे संजय सिंह, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गलती मानी तो इसे मुद्दा बनना ही था।
हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ, प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना, ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यही उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपसे आपके सामने रखे हैं देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इसको इस पर राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं।
आम आदमी पार्टी के नेताओं की झिझक और चुप्पी ने इस मामले को और जटिल बनाया है, बल्कि लखनऊ एयरपोर्ट पर विभव कुमार की तस्वीर ने इस मामले को और हवा दी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई, वे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ दौरा कर रहे हैं। विभव कुमार केजरीवाल के निजी सहायक रहे हैं, इस नाते टारगेट पर भी रहते हैं, विभव के घर पर छापे पड़ते रहे हैं। फरवरी 2024 में विभव के घर पर भी छापा पड़ा, अप्रैल महीने में ईडी ने विभव से पूछताछ की, गिरफ्तारी नहीं हुई। केजरीवाल के जेल जाने के बाद 11 अप्रैल को विजिलेंस निदेशालय ने उन्हें प्रधान सचिव के पद से हटा दिया। 2007 के पुराने केस में विभव को हटाया गया। जाहिर है विभव कुमार के खिलाफ राजनीति भी कम नहीं होती। 2007 का मामला धरना प्रदर्शन में शामिल होने का था। खबरों के मुताबिक 2007 में नोएडा में विभव और एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज हुई थी कि वे हिंसा कर रहे थे, सरकारी अधिकारी को उसका काम नहीं करने दे रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से छापा था कि जब यह FIR हुई तब विभव नोएडा में एक प्रदर्शन में भाग ले रहे थे। प्रदर्शनों में अनेक लोगों पर FIR हो जाती है, मगर 15 साल बाद विभव को इस कारण उनके पद से हटाया जाता है। विभव का पक्ष अभी नहीं आया है। खबर आ रही है कि पुलिस इस मामले में अरविंद केजरीवाल के घर पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज की जांच करेगी। स्वाति मालीवाल 13 मई की सुबह किसी के बुलाने पर मुख्यमंत्री आवास गईं या बिना समय लिए चली गईं? मुख्यमंत्री के घर पर उनका स्टाफ कब आता है, उनकी मुलाकातों का कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होता है, उस वक्त वहां और कितने लोग बाहरी थे और कितने स्टाफ थे, इस मामले में इन सवालों के जवाब जरूरी। केजरीवाल के घर के ड्राइंग रूम तक जाने का सिस्टम क्या है, हर किसी को विभव के कमरे से होकर गुजरना होता है या कुछ चुनिंदा लोग सीधे ड्राइंग रूम तक जा सकते हैं? आपको याद होगा केजरीवाल को इसी घर से गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना के सांसद श्री रामुलु रेड्डी ने इसी जगह पर उनसे मुलाकात के लिए समय मांगा, जिसके आधार पर उनके ऊपर राजनीतिक आरोप लगाए गए। एक बार फिर से केजरीवाल का घर निशाने पर है। जाहिर है पूछताछ की जद में केजरीवाल भी आएंगे। 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आए हैं, तो क्या बाकी के बचे दिनों में केजरीवाल को इसी केस में डिस्टर्ब होना पड़ेगा? दिल्ली में मतदान 25 मई को है। स्वाति मालीवाल और केजरीवाल के संबंध काफी मधुर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में स्वाति मालीवाल की जगह काफी महत्वपूर्ण रही है। स्वाति मालीवाल और केजरीवाल के संबंध भी अच्छे रहे हैं, तो क्या आप बिगड़ गए? कुछ तो हुआ होगा, इसके बारे में वही बेहतर बता सकती हैं। इसी जनवरी में स्वाति मालीवाल को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कई नेता, विधायक, कार्यकर्ता दिन रात धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मगर स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा को लेकर दबी जुबान में चर्चा चलने लगी कि दोनों कहां हैं। बाद में सौरभ भारद्वाज का एक बयान आया कि राघव चड्ढा की सर्जरी हुई है, लेकिन अब तो काफी दिन हो गए। राघव ने केजरीवाल की रिहाई पर ट्वीट किया है, लेकिन उसके बाद से खामोश हैं। सवाल है कि अभी तक वे वापस क्यों नहीं आए? स्वाति मालीवाल इतने दिनों तक कहां थी? राज्यसभा के सांसद के नाते वे भी धरना प्रदर्शन में क्यों नहीं दिखी? महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटने के बाद उन पर किसी तरह की बाध्यता तो नहीं थी? वैसे अमेरिका से लौटकर स्वाति मालीवाल ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया है। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के काम की तारीफ की, लेकिन अचानक उस दिन क्या हो गया, क्यों इतना सब कुछ बिगड़ गया? स्वाति मालीवाल जुझारू नेता हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में उनके काम की तारीफ होती रही है, तभी केजरीवाल ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया। उनकी सक्रियता का विरोध बीजेपी भी करती रही है। बीजेपी ने उन पर क्या क्या आरोप नहीं लगाए, अब वही बीजेपी स्वाति मालीवाल के कहे बिना उनके लिए संघर्ष कर रही है। इसी साल फरवरी के इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, दिल्ली पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो ने कथित रूप से रिश्वत लेकर अपनी पहचान के लोगों को दिल्ली महिला आयोग में नियुक्त करने का मामला दर्ज किया। ये नियुक्तियां जुलाई 2015 से अगस्त 2016 के बीच हुई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा है। पूर्व विधायक बरखा शुक्ला सिंह ने इस मामले में शिकायत की। जब शिकायत की तब वे कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में हैं। इस मामले में बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने दिसंबर 2022 में उपराज्यपाल वीके सक्सेना से पत्र लिखकर मांग की थी कि उन्हें उनके पद से हटा दिया जाए। एक अदालत ने उस समय मालीवाल के खिलाफ प्रथम दृष्टया आधार पर आरोप दर्ज करने के आदेश भी दिए थे। केस मुकदमा का जब भी जिक्र आता है संदेह गहरा हो जाता है। क्या इस केस के डिटेल की भी कोई भूमिका होगी? जिस तरह से आम आदमी पार्टी जांच एजेंसियों की निगाह में रहती है, लगता नहीं कि स्वाति मालीवाल इस तरह के काम करने का जोखिम उठाएंगी। लेकिन इस देश में झूठे मुकदमों की भी उम्र होती है और उसके आधार पर बड़े बड़े राजनीतिक बदलाव हो जाते हैं। स्वाति मालीवाल की FIR के बाद विभव की गिरफ्तारी को अब मीडिया बहुत बड़ा बनाएगा। वही मीडिया जिसने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कितना बड़ा बनाया। इस तरह की बातें कही गई जैसे सब कुछ आज ही साबित हो गया हो। प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी में जितनी ताकत नहीं लगी, उससे कहीं ज्यादा ताकत विभव की गिरफ्तारी करने में लगा दी जाएगी। इस चुनाव में चर्चा क्या हो रही है? गिरफ्तारी की, दल बदल की, अदालत के फैसले की, प्रधानमंत्री के इंटरव्यू और उनके झूठ की। मुद्दों की चर्चा गायब है। विपक्ष के वादों की चर्चा गायब है कि 10 किलो अनाज देंगे, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा और 30 लाख भर्तियां केंद्र सरकार में 15 अगस्त के पहले हो जाएंगी। चुनाव की लड़ाई सूचना को रोक कर, सूचना को पहुंचाकर लड़ी जाती है। इतना तो आप समझते होंगे कि किस बारे में ज्यादा सूचना पहुंच रही है, किस बारे में कम। सत्यानाश निश्चित है और महाविनाश आ रहा है। आपको 20 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सीट की बेल्ट खोल लीजिए, बांधने का अब कोई फायदा नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।